यह एआई युग की निर्णायक कंपनी है, लेकिन यह दो बार लगभग मर गई थी और बीच के एक दशक तक इसका मजाक उड़ाया गया। यह रही एनवीडिया की साल दर साल चढ़ाई। हर्षल दसानी द्वारा 1993 तीन चिप इंजीनियर जेनसन हुआंग, क्रिस मैलकोस्की और कर्दिस प्रीम सैन जोस के एक डेनिस में कॉफी पर मिलते हैं। हर एक $200 लगाता है और दाव लगाते हैं कि 3D ग्राफिक्स कंप्यूटिंग को नया आकार देगा। वे कंपनी का नाम एनवीडिया रखते हैं। 1995 उनकी पहली चिप NV1 घुमावदार क्वाड्रेटिक सतहों पर दाव लगाती है, ठीक उसी समय जब इंडस्ट्री माइक्रोसॉफ्ट के नए डायरेक्टएक्स मानक के नेतृत्व में त्रिभुजों पर सहमत हो जाती है। मायने रखने वाले गेमों के साथ असंगत होने के कारण यह फ्लॉप हो जाती है। 1996 सेगा, जिसने अपने कंसोल के लिए एनवीडिया के तरीके का समर्थन किया था, अगली चिप NV2 को रद्द कर देती है। यह नई कंपनी मौत से कुछ ही महीने दूर है और हुआंग जीवित रहने के लिए अपने आधे से ज्यादा स्टाफ की छंटनी कर देते हैं। 1997 लगभग 30 दिन की नकदी बची होने के साथ एनवीडिया रीवा 128 भेजती है, तेज, सस्ती और सबसे अहम संगत। यह 4 महीनों में 10 लाख यूनिट बेचती है और कंपनी को आखिरी संभव क्षण में बचा लेती है। 1999 एनवीडिया $12 प्रति शेयर पर सार्वजनिक होती है। उसी साल यह जेफोस 256 लॉन्च करती है और इसके लिए एक शब्द गढ़ती है जो पूरी इंडस्ट्री पर चिपक जाता है, GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। 2006 एनवीडिया कूड़ा जारी करती है, एक सॉफ्टवेयर जो आम प्रोग्रामरों को सिर्फ ग्राफिक्स ही नहीं बल्कि सामान्य गणित के लिए GPU का इस्तेमाल करने देता है। वॉल स्ट्रीट सिर्फ खर्च देखती है और कोई बाजार नहीं, और सालों तक स्टॉक को सजा देती है, फिर भी हुआंग इसे फंड करते रहते हैं। 2012 एनवीडिया के गेमिंग GPU की एक जोड़ी पर ट्रेन किया गया एलेक्सनेट नामक एक न्यूरल नेटवर्क इमेजनेट इमेज रिकॉग्निशन प्रतियोगिता में सबको पीछे छोड़ देता है। डीप लर्निंग फूट पड़ती है और कूडा, जिसका 6 साल तक उपहास उड़ाया गया, वही प्लेटफॉर्म साबित होता है जिस पर यह सब चलता है। 2016 हुआंग व्यक्तिगत रूप से पहला DGX, एक AI सुपर कंप्यूटर, एक ही बॉक्स में 8 हाई एंड GPU, OpenAI नामक एक नई लैब के लिए खुद हाथ से पहुंचाते और हस्ताक्षर करते हैं। AI युग की हार्डवेयर सप्लाई चेन चुपचाप शुरू हो जाती है। 2017 वोल्टा आर्किटेक्चर टेंसर कोर्स पेश करता है, AI के मैट्रिक्स गणित के लिए खास तौर पर बनाई गई सर्किटरी जो GPU को मशीन लर्निंग के इंजन के रूप में पक्का कर देती है। 2022 ChatGPT लॉन्च होता है और दुनिया AI बनाने की दौड़ में लग जाती है। हर मॉडल को एनवीडिया की H100 चिप्स चाहिए और कंपनी उन्हें इतनी तेजी से नहीं बना पाती। H100 ग्रह पर सबसे ज्यादा मांगा जाने वाला हार्डवेयर बन जाता है। 2023 से AI बूम पर सवार होकर एनवीडिया का बाजार मूल्य $1 ट्रिलियन पार कर जाता है और उस क्लब में शामिल हो जाता है जो तब तक गिनेचने कंज्यूमरटेक दिग्गजों के लिए ही आरक्षित था। 2024 ब्लैकवेल पीढ़ी आती है और मार्केट कैप $3 ट्रिलियन के पार छलांग लगाती है, जो एनवीडिया को कभी कभी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बना देती है। एक पूर्व ग्राफिक्स कार्ड निर्माता जो अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में है। 2025 एनवीडिया अपना अगला प्लेटफॉर्म रूबिन अनावरण करती है, जिसके इर्द गिर्द AI डेटा सेंटर खर्च की पूरी 2026 लहर की योजना बनाई जा रही है। यह अब चिप्स बेचने से कहीं ज्यादा AI इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट बेच रही है। 2026 एनवीडिया का बाजार मूल्य $4 ट्रिलियन पार कर जाता है। कूडा, जो कभी सेमीकंडक्टर इतिहास का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया गया R&D दाव था, अब व्यापक रूप से दुनिया का सबसे मूल्यवान सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म कहलाता है। AI युग के नीचे की खाई पैटर्न ही असली बात है। वे 1997 में लगभग मर गए थे और कूड़ा को लेकर 10 साल तक उनका उपहास उड़ाया गया। बाजार सामरिक दावों को तब तक पुरस्कृत नहीं करता जब तक वह क्षण नहीं आ जाता और फिर वह उन्हें एक साथ पुरस्कृत करता है। दशक भर चलने वाला प्लेटफॉर्म दाव सबसे बड़ा लाभांश देता है, लेकिन सिर्फ उसी टीम को जो उस दशक को झेलने के लिए तैयार हो। यह ब्लॉग केवल जानकारी और सामान्य रुचि के लिए है। यह निवेश सलाह या किसी कंपनी या प्रतिभूति के संबंध में कोई सिफारिश नहीं है। आंकड़े और तारीखें सार्वजनिक स्रोतों से ली गई हैं। यह सामान्य जानकारी है, कोई निवेश सलाह नहीं।